चंद्र की जय। मोर मुक्त वंशी वाले की। तो पूछने पर तीन बात मिली कि कोई तो कहे कि प्रेम के विषय को, कोई कहे आपके जो मनमायुओं को, कोई कहे कि दिन ये जो प्रातःकाल माने 9 बजे जो विषय श्रद्धा को विषय वो कहो। तो बात तो सभी अच्छी है, कोई कहो। तो प्रेम के विषय में यह बात है कि प्रेम जो है सो भगवान के मां करना चाहिए, और वो प्रेम है सो विशुद्ध होना चाहिए, अनन्य होना चाहिए। तो बस उसी बहुत परमात्मा की प्राप्ति हो सके। भगवान में जो प्रेम है उसको फल तो भगवान की प्राप्ति है, किंतु भगवान को छोड़कर के और चाहे कोई महात्मा में हो, चाहे भगवान के भक्त में हो, चाहे शास्त्र में हो, वो है तो ठीक, किंतु भगवान के समान तो भगवान ही है। तो प्रेम के लायक तो केवल एक भगवान है, उसमें वो प्रेम है तो अनन्य और विशुद्ध होने चाहिए। यह बात जरूर है कि भगवान की प्राप्ति के उद्देश्य से, भगवान की प्राप्ति के उद्देश्य से या भगवान में प्रेम होने के उद्देश्य से और किसी से भी प्रेम किया जाओ भगवान नहीं है। साधन संसार के प्राणियों के बीच के ना कोई भाई इस उद्देश्य से प्रेम करे कि भगवान की प्राप्ति के लिए, तो जिसका परिणाम नतीजा जिसका यह है कि भगवान की प्राप्ति, तो वो प्रेम भगवान के में ही है। जैसे कोई रुपयों के वास्ते किसी में प्रेम करे तो मुख्य रुपया ही है, तो वो रुपया में उसको प्रेम समझो या तो भगवान के उद्देश्य से, भगवान की प्राप्ति के उद्देश्य से, भगवान के मां प्रेम होने के उद्देश्य से जो मनुष्य किसी भी प्राणी से प्रेम करे तो वो भगवान में ही वो प्रेम है। या सब के मां भगवान विराजमान है ऐसा समझ करके ये समझे कि सबकी सेवा ही भगवान की सेवा, सबका आदर ही भगवान का आदर है, और सबके मां जो प्रेम है वो भगवान में प्रेम है। अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है, निष्काम भाव से समझे कि मनुष्य से प्रेम करता है, सब में भगवान समझ करके सबसे प्रेम करे तो भगवान से प्रेम है। या समझो भगवान की प्राप्ति के लिए सबसे प्रेम करे तो भगवान में ही प्रेम है, भगवान में प्रेम होने के उद्देश्य से सबसे प्रेम करे तो भगवान में ही प्रेम है। अनन्य उसको कहे कि भगवान को छोड़ करके और दूसरे में प्रेम न हो, किंचित मात्र भी किसी में प्रेम न हो भगवान को छोड़ करके, वो केवल जो भगवान में प्रेम है वो ही अनन्य प्रेम है। और भगवान में प्रेम करने का उद्देश्य है, प्रेम के लिए प्रेम करना है या भगवान के लिए प्रेम करना है, तो उस गति का प्रेम है। कोई वस्तु को लेकर के मुक्त अपने प्रेम भगवान में किए जा, स्त्री के लिए, पुत्र के लिए, धन के लिए, स्वर्ग के लिए, तो वो प्रेम विशुद्ध नहीं है। यदि साथ में दूसरी कामना है तो संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके के जो निष्काम भाव से प्रेम किया जाता है वो प्रेम दामी है। तो अपना खूब प्रेम बढ़ाना चाहिए, भगवान के वहां प्रेम होने को एक तो सबसे बड़े ये उपाय है कि यह लगन हो जाए कि भगवान में कैसे प्रेम हो, भगवान में कैसे प्रेम हो, तो भगवान में प्रेम शीघ्र हो सके। जैसे कोई आदमी के या जागृति हो जाए कि रुपया कैसे मिले, रुपया कैसे मिले, रुपया कैसे मिले, ऐसा जो रुपयों का जो प्रेमी है उसको रुपया मिले ही यह बात नहीं है, क्योंकि रुपया जड़ है, जड़ वस्तु तो जड़ ही है ना। यदि हम रुपयों को चाहें, किंतु रुपये तो हमको नहीं चाहते, उनमें चाहना बनती ही नहीं, तो रुपये मिल भी सकते नहीं भी मिल सके। पर भगवान तो चेतन है, हम भगवान को चाहते हैं तो भगवान हमारे को चाहते हैं, तब हमारी इच्छा की पूर्ति तो नहीं भी है, किंतु भगवान की इच्छा की पूर्ति न हो ऐसी बात तो नहीं है। भगवान की प्रतिज्ञा है कि ये यथा मांग प्रपद्यं ते तां तथे बजा में हम। गीता अध्याय 4 श्लोक 11 में यह बात कही है, जो जिस प्रकार से मुझको भजते हैं, ये यथा यथा माने जिस प्रकार से, जो मुझ परमात्मा को जिस प्रकार से भजते हैं उनको मैं उसी प्रकार से भजता हूं, तो भगवान को जो चाहता है तो भगवान उसको चाहते हैं। तो एक तो यह बात है कि भगवान में हमारा कैसे प्रेम हो, भगवान में हमारा कैसे प्रेम हो, या लगन होनी चाहिए, या कभी भूल नहीं रहनी चाहिए, या बात हर वक्त हृदय में ताजा रहनी चाहिए, इसकी जागृति हृदय के में रहनी चाहिए कि भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, तो उसको भगवान मिलेंगे, ये निश्चित बात है। दूसरी बात यह है, भगवान के गुण प्रभाव तत्व रहस्य की जो बातें हैं, भगवान के नाम रूप लीला और धाम की जो बातें हैं, इन बातों को कानों से बार बार सुने तो भगवान में प्रेम बढ़ सकता है, और इन सब बातों को दूसरों को प्रेम से कहें तो और प्रेम बढ़ सकता है। और भगवान की भक्ति के जो ग्रंथ है, जिसके मां भगवान के गुण प्रभाव की महिमा लिखी हुई है, जिसमें भगवान के नाम रूप और लीला की बातें हैं, उन बातों को बार बार पढ़ने सुनने से भी भगवान के बीच के मां प्रेम होता है। जय सीताराम सीताराम और उपाय है, जो भगवान के प्रेमी हैं, उन भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करने से भी भगवान के मन प्रेम हुए, उनके प्रेम को देख करके भी प्रेम हुए, और ऐसे प्रेमियों की बात सुनने से भी प्रेम हुए। जी आप श्री के मां गोपियों के प्रेम को देख करके एक गोपी से दूसरी गोपी का प्रेम हुआ करते थे, दूसरे आदमी का भी, और स्वाभाविक ही भगवान के मां प्रेम होना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे स्वामी और हम उनके सेवक। ये कलिकाल में बड़ा उत्तम भाव है, तुलसीदास जी कहते हैं, सेवक से भाव बिनो भवन तर ही उरेगार। भजिए राम पद पंकज ऐसे सिद्धांत विचार। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक सेव्य भाव बिनु स्वामी सेवक के भाव के बिना हे गुरु जी भव जो संसार है इस संसार सागर से पार नहीं हो सकता ऐसा सिद्धांत विचार करके भगवान के चरण कमलों का भजन करना चाहिए। तो इसमें ये बात है प्रभु हमारे स्वामी और मैं उनका सेवक, ये जो भाव है बड़ा उत्तम भाव है क्योंकि ये जीव जैसे भगवान का अंश है, यूं कह जो चाहिए अंश कह जो चाहिए सेवक कह जो एक ही बात है। जैसे लड़का जो पिता का अंश होता है इसी प्रकार से जीव ईश्वर का अंश है, अंश अंश ही सेवक है। गीता ने बताया कि मनी नाम से जीव लोग के जीव भूत सनातन है, ये जीवात्मा मेरा सनातन अंश है, इस देह के बीच के ना ये जीवात्मा मेरा सनातन अंश है। तुलसीदास जी भी यही बात कहते हैं, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, ये जीवात्मा ईश्वर का अंश है, चेतन है, मल रहित है और आनंद की राशि है। यह बात समझ में आ जा रहा कि भी मैं परमात्मा को अंश हूं तो स्वाभाविक ही उसको प्रेम परमात्मा में हो जाए, क्योंकि जब लड़के के यह बात समझ में आ जाती है कि ये मेरे माता पिता और मैं इन्हा को अंश हूं तो माता पिता में स्वाभाविक लड़के को प्रेम हो जाए। एक तो भगवान में स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए और दूसरी बात यह है कि भगवान के समान संसार में कोई गुण ही नहीं है। क्षमा दया शांति समता संतोष सरलता ज्ञान वैराग आदि भगवान के में अनंत अनेक गुण है और एक एक गुण जैसो की ऐसी में अपरिमित है। सारी दुनिया के गुणों को इकट्ठा कर लिया जाए तो गुणा सागर जो भगवान है उस गुणा सागर के एक बूंद के समान भी सब मिलकर के नहीं हो सके। ऐसी परिस्थिति के बीच के मां भगवान के समान कोई है ही नहीं, यह बात समझ में आ जावे तो फिर भगवान के साथ दूसरे प्राणी में या कोई पदार्थ में प्रेम कैसे हो सके। और हुआ तो भगवान के लिए हो, और भगवान बड़े प्रभावशाली है संसार के मां शक्ति प्रभाव जो भी आपने प्रतीत हो है वो सब भगवान को ही है। एक समय के बीच के मां देवताओं में ये अभिमान हो गया था, वो देवता कि मैं बड़ा, दूसरा कहता मैं बड़ा, तीसरा कहता मैं बड़ा। केन उपनिषद में लिखा है कि देवताओं का आपस में स्त्री से झगड़ा होने गया तो देवताओं की जहां सभा होती थी देवलोक में इंद्रलोक में वहां भगवान पहुंचे और यक्ष के रूप में प्रकट हुए। जब यक्ष के रूप में भगवान प्रकट हुए तो देवराज इंद्र ने अग्नि देवता से कहा कि अग्निदेव तुम जाकर के इसकी खबर लाओ ये कौन है। तो देवताओं का राजा जो इंद्र के कहने पर कुंभ होने पर अग्नि देवता उनके पास गए और जाकर पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मैं यक्ष हूं। फिर यक्ष ने अग्नि से पूछा कि तुम कौन हो, तो अग्नि ने कहा कि मेरा नाम अग्नि है, दूसरा मेरा नाम जातवेद है। तो यक्ष ने पूछा कि तुम्हारी शक्ति कितनी है, तो अग्नि ने कहा कि मेरी बड़ी भारी शक्ति है, मैं चाहूं तो सारे ब्रह्मांड को क्षणमात्र में भस्म कर। तो यक्ष ने जो साक्षात भगवान ही थे गुप्त रूप से आए थे एक तिनका रखा, वो इस तिनके को जलाओ, तो अग्नि ने अपनी सारी शक्ति लगा दी किंतु तिनके को अग्नि देवता नहीं जलाने सके। क्यों? कि भगवान ने अपनी जो शक्ति तो निकाल ली अग्नि में से, अब अग्नि में क्या धरे, वह क्या कर सके। तो अग्नि देवता लज्जित होकर के और देवराज इंद्र के पास में आए। देवराज ने पूछा कि कौन है। अग्नि ने कहा कि मैं नहीं जानता, ये मेरी सामर्थ्य के बाहर। तो फिर वायु देवता को हुक्म दिया कि आप जाओ। फिर वायु देवता उनके पास गए और जाकर पूछा कि आप कौन है। तो यक्ष ने कहा कि मैं यक्ष हूं। फिर यक्ष ने वायु देवता से पूछा कि तुम कौन हो। तो वायु देवता ने कहा मेरा नाम वायु है और दूसरा मेरा नाम मातृस्व। तुम्हारी शक्ति, बोले हमारी शक्ति को क्या पूछू, मैं चाहूं तो सारे ब्रह्मांड को ऐसा उठा करके कहीं का कहीं ले जाऊं। तो उनके सामने भी एक तिनका रखा, इस तिनके को उड़ाऊ। तो वायु ने अपना सारा बल लगा लिया किंतु तिनका जो है तिल भर भी हल्या भी नहीं। तो वायु देवता पराजित हो गई और वहां इंद्र के पास आई। इंद्र ने पूछा क्यों भाई, ये कौन है। बोले पता नहीं है, मैं इसको नहीं पहचानती। इंद्र ने सोचा चलो मैं ही चलू। तो इंद्र देवता वहां आए। इंद्र के आते ही यक्ष समझो कि अंतर्धान हो गया, गायब हो गया। इंद्र वहां क्या देखते हैं कि आकाश के बीच के वहां जो है भगवती उमा देवी जो है पार्वती, ये आकाश के वहां विराजमान। पूछा कि हे उमा देवी, अब ये यक्ष के रूप के वहां जो था वो कौन था। क्योंकि वो तो साक्षात भगवान थी। तुम लोगों के वहां जो अहंकार बढ़ गया था कि देवताओं की और आसुरों की जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई के बीच में अग्नि देवता तो कहता है कि मेरे प्रभाव से विजय हुई, वायु का मेरे प्रभाव से, इस प्रकार से सब देवता पृथक पृथक कहने लगे और अपने अपने प्रभाव की डींग मारने लगे। तो उस अवस्था के बीच के वहां भगवान प्रकट होकर के और देवताओं का जो मद अहंकार उसको चूर्ण कर दिया। तो भगवान देवताओं के अभिमान को चूर्ण करने के लिए यहां प्रकट हुए थे। तो ये बात सुनकर के देवराज इंद्र के समझ में आ गई। तो देवराज इंद्र उमा के उपदेश को सुनकर के भगवान को जान गया। उस भगवान को तो जानना ही है, जानने से मुक्ति हो जाती है। उसके बाद में इंद्र आकर के वायु ने और अग्नि देवता ने भी वे सारी बात कही तो वे भी जान गए, उनको भी भगवान का यथार्थ ज्ञान हो गया। उसके बाद और देवता जाने, इसलिए सबसे प्रथम समझो कि देवताओं में इंद्र ने समझा, फिर अग्नि और वायु ने। तो ये सबसे श्रेष्ठ मान्य हो गए, सर्वश्रेष्ठ मानने लगे इनको। उन सब के वहां जो शक्ति थी वो भगवान की थी। गीता में कहे कि यदि यदि विभूति मत तत्व श्री मधुर जीवन में हुआ, यदि यदि विभूति मत तत्व श्री मधुर जितने हुआ, तब तदेवावगछन तुम मम तेजोंश संभवम। कि जो जो संसार में विभूति वाली चीज है, जिसे भगवान ने गीता की 10वीं अध्याय के में विभूतियों का विस्तार किया है, तो जो जो विभूति वाली चीज है और कांति वाली चीज और बल वाली चीज है, भगवान कहते हैं वो सब मिलकर के मेरा जो एक प्रभाव है उसी एक अंश का ही सब प्रादुर्भाव है। जब ये ज्ञान हो जाए कि भगवान के समान कोई प्रभावशाली नहीं है, और भगवान असंभव को भी संभव कर सकते हैं, भगवान चाहो तो सबका कल्याण कर सकते हैं, जब इस प्रकार से भगवान के प्रभाव को मनुष्य समझ जावे तो भगवान को छोड़ के क्या किसी दूसरे पदार्थ में या दूसरे प्राणी में कभी प्रेम कर सकता है? कभी नहीं। तो यह बात समझ में आ जाए कि भगवान बड़े प्रभावशाली है और वह असंभव को भी संभव कर सकते हैं, भगवान बड़े गुणी हैं, उनके गुणों का कोई था नहीं है, तो भगवान से कोई दोस्ती करना चाहे उससे भगवान दोस्ती करते हैं। पर भगवान अंतर्यामी है, हमारे हृदय की बात को भगवान जानते हैं और बड़े दयालु है। भगवान से कोई कुछ मांगता है तो भगवान उसकी इच्छा की पूर्ति करते हैं, पर कभी नहीं करते हैं तो उसमें भी उस साधक का हित भरा हुआ है। जिसे नारद जी ने ये इच्छा की मैं आपका हरि का रूप दे दूं, मैं जो अशुद्धा करूंगा, भगवान ने सोचा कि इसका पतन हो जाएगा ब्याह करने से, तो हरि भगवान का भी नाम है और हरि बांध का नाम भी है, तो बांध का रूप दे दिया। तो जहां स्वयंवर हो तो हो, वहां सब लोग गए उसको बहने के लिए स्वयंवर के मां। तो नारद जी अपना मुंह आगे आगे निकालते हैं, तो वहां जो गंधर्व लोग थे वे दे करके हमसे, तो नारद जी ने उन गंधर्वों को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि नारद जी से कि महाराज श्राप तो उनको दे दिया, पर हमसे वो कोई बात ऐसी थी कि बिना हंसिए रह नहीं सके। आप अपना मुख तो देखो, तो आईने में नारद जी ने अपना मुख देखा तो मुख है तो बंदर का था। तो नारद जी को बड़ा क्रोध आया और कुपित होकर के भगवान के पास गए और जाकर के साफ दी, आपने मुझको धोखा दिया, मैं तो आपको कहा कि मैंने हरि आपका रूप थी। बोलो हरि तो सिंह का भी नाम और बंदर का भी नाम और भगवान का भी नाम है, तुमने हरि का तो हरि का रूप दे दिया, तो बोलो मैं अब तुम्हारे को श्राप देता हूं कि तुम जाकर के मृतलोक में जन्म लो और ये बंदर ही एक प्रकार से तुम्हारी मदद करेंगे। तुमने मुझको बंदर का मुंह दिया तो तेरी भी बलटन बंदर की होगी। भगवान ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात की। तो भगवान नारद का श्राप स्वीकार कर लिया, तो उनका तो भाव यह था कि भी भक्त का हित करना, तो भक्त का हित इसी में था कि नारद विवाह न करे। तो भगवान जो कुछ करते हमारे हित की बात ही करते हैं, ये बात हमारे समझ में आ जावे तो भगवान में प्रेम अपने आप ही हो जावे। करने वाले में स्वाभाविक ही प्रेम होता है, कोई भी आपका परम हित करता है तो उसमें आपका स्वाभाविक प्रेम होता ही है। तो भगवान में ऐसा प्रेम हुआ कि एकदम अनंत प्रेम, विशुद्ध प्रेम, जिस प्रेम में कोई कामना नहीं होती, प्रेम को छोड़कर अन्य कोई चीज की कामना नहीं होती, वो विशुद्ध प्रेम है। कि तो भगवान से क्यों प्रेम करता है कि प्रेम के लिए? प्रेम के समान संसार में कोई पदार्थ नहीं है। इस प्रकार समझने पर भगवान के मां अनन और विशुद्ध प्रेम हो जाता है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
Amen.